سیرت حضرت اما جان رضی اللہ تعالی عنہ، تصنیف صاحبزادی امت الشکور صاحبہ۔ ہندوستان کے شہر دہلی میں ایک بزرگ بخارا سے آ کر آباد ہوئے۔ ان کا نام خواجہ محمد طاہر تھا۔ ان دنوں ہندوستان پر شہنشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی۔ بادشاہ حضرت خواجہ محمد طاہر کو اپنا پیر مانتا تھا اور آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ سادات کا یہ خاندان اپنے سلسلہ نسب کی وجہ سے بہت معزز شمار ہوتا تھا۔ اس خاندان میں بہت سے بزرگ پیدا ہوئے اور اسی خاندان میں 12ویں صدی ہجری میں حضرت خواجہ محمد ناصر دہلوی کی پیدائش ہوئی۔ انہیں اس صدی کا ولی کہا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت خواجہ میر دد کو بھی لوگ 13ویں صدی کا ولی کہتے ہیں۔ انہی خواجہ میر دد رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں حضرت سیدہ نصر جہاں بیگم پیدا ہوئیں، جنہیں ہم حضرت اما جان کہتے ہیں۔ آپ نے حضرت اما جان کا نام سنا ہوگا، اور آپ کو شوق بھی ہوگا کہ حضرت اما جان کی سیرت اور زندگی کے بارے میں آپ بھی کچھ جانیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ کا یہ شوق پورا کریں اور آپ کو اپنی عظیم روحانی ماں کی پیاری پیاری باتیں بتائیں۔ حضرت اما جان کے والد میر ناصر نواب صاحب تھے، اور آپ کی والدہ کا نام سید بیگم تھا۔ دونوں بے حد نیک اور سادہ تھے، اور لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ دونوں ہی دین کے پابند، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے اور نمازیں بڑی پابندی سے پڑھنے والے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد آپ دونوں بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گئے۔ آپ کو تمام جماعت احمدیہ حضرت اما جان کے والدین ہونے کی وجہ سے نانا جان اور نانی جان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت نانا جان حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے جانصار فدائی اور جماعت احمدیہ کے انتہائی مخلص خادم تھے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے اوورسیئر تھے۔ قادیان میں جماعت کی سب ہی عمارتیں حضرت نانا جان کی بنائی ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کر ان کے دین کی خدمت کے شوق کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت نانا جان ایک اعلیٰ سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ایسے ہی حضرت نانی جان کا خاندان بھی بہت اونچا تھا۔ ان کا ننیحال اور ددیال سید تھا۔ حضرت اما جان آپ دونوں کی اکلوتی بیٹی تھیں، البتہ بیٹے دو تھے۔ بڑے بیٹے حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب اور چھوٹے بیٹے حضرت میر محمد اسحاق صاحب تھے۔ حضرت اما جان کو اپنے دونوں بھائی بہت پیارے تھے، اور دونوں ہی خدا کے فضل سے مخلص جانصار احمدی اور دین کے خادم تھے۔ پیدائش اور بچپن۔ حضرت اما جان کی پیدائش 1865 میں دہلی میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت نانا جان کے حالات بہت تنگ تھے، بیکاری کا زمانہ تھا، لیکن آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ حالات بہتر ہو گئے۔ کھوئی ہوئی جائیداد کا ایک حصہ واپس مل گیا، اور ملازمت بھی مل گئی، جس سے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے۔ گویا آپ کی پیدائش پر ہی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ یہ ایک بابرکت خاتون ہیں، یہ ایک بابرکت خاتون ہے۔ حضرت نانا جان نے گھر ہی پر آپ کو تعلیم دی۔ قرآن کریم کی تعلیم کے علاوہ اردو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھیں، بڑے سلیقے والی تھیں۔ آپ کی تربیت خالص دینی طرز پر ہوئی۔ کیونکہ آپ لوگ دہلی کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اور اوڑھنا غرض سب دہلی والوں کی طرح تھا۔ حضرت نانا جان نے آپ کا پہلا نام نصر جہاں بیگم اور دوسرا نام عائشہ رکھا۔ آپ کی شادی۔ اس زمانے میں لڑکیوں کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی جاتی تھی۔ آپ کے بھی بہت سے رشتے آئے، لیکن آپ کے والدین کو کوئی رشتہ پسند ہی نہ آتا تھا۔ کوئی رشتہ نانا جان کو پسند نہیں آیا تو کسی کا نانی جان نے انکار کر دیا۔ اصل میں نانا جان کو کسی بہت دیندار رشتے کی تلاش تھی۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو حضرت نانا جان نے گھبرا کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو لکھا کہ حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح داماد عطا کرے۔ ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے بتایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تیری دوسری شادی کر دوں اور سب انتظام میں خود کروں گا، اور یہ بھی بتایا کہ تیرا رشتہ دہلی کے ایک سید خاندان میں ہوگا۔ اس لیے جب حضرت نانا جان کا دعا کا خط پہنچا تو حضور نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنے رشتے کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی لکھ دیا، آپ مجھ پر نیک زن کر کے لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اس وقت حضور کی پہلی بیوی موجود تھی، اس سے آپ کے دو بیٹے بھی تھے، بڑے کا نام تھا حضرت مرزا سلطان احمد اور چھوٹے تھے حضرت مرزا فضل احمد۔ لیکن چونکہ آپ کی پہلی بیوی کی طبیعت میں دنیا داری بہت تھی اور دینی حالت کمزور، اس لیے آپس میں بہت معمولی تعلق رہ گیا تھا اور حضور بہت بے آرامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ وہ آپ کی دوسری شادی کر دے۔ جب رشتہ آیا تو حضرت نانی جان کو یہ اعتراض ہوا کہ آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ کا رہنا سہنا اور زبان دہلی والوں سے مختلف ہے، عمر بھی بڑی ہے، پہلے شادی بھی ہو چکی ہے۔ اس عرصے میں حضرت اماں جان کے کئی رشتے آئے لیکن نانی جان کو وہ رشتے پسند نہ آئے، اور آخر ایک دن فرمایا، ان لوگوں سے تو غلام احمد ہزار درجے بہتر ہے۔ چونکہ حضرت نانا جان پہلے ہی یہ چاہتے تھے، آپ نے موقع غنیمت جان کر فوراً ہی حامی بھری اور حضور کو رشتے کی منظوری کی اطلاع دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت اماں جان بیاہ کر دہلی سے قادیان لائی گئیں۔ آپ کا نکاح جامع مسجد دہلی کے مشہور خطیب سید نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا۔ رہن سہن اور زبان کے فرق کے باوجود حضرت اماں جان نے اپنے آپ کو اس ماحول میں نہایت خوبی سے ڈھال لیا، اس سے آپ کی سمجھ بوجھ، لیاقت اور غیر معمولی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ کسی عام عورت کے بس کا کام نہ تھا۔ شروع میں تو آپ بہت گھبرائیں، یہاں تک کہ حضرت نانی جان کو لکھ کر بھیجا، حضرت نانی جان کو لکھ بھیجا کہ میں اس قدر گھبرائی ہوئی ہوں کہ شاید میں غم اور گھبراہٹ سے مر جاؤں گی۔ لیکن ایک ماہ بعد جب دہلی گئیں تو حضرت نانی جان نے خود ہی بتایا کہ مجھے تو انہوں نے بڑے آرام سے رکھا ہوا ہے، میں یوں ہی گھبرا گئی تھی۔ شروع شروع میں آپ کا گھبرا جانا ایک قدرتی بات تھی۔ اس کے متعلق حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے بتایا کہ اماں جان نے ایک بار ذکر کیا کہ جب تمہارے ابا مجھے بیا کر لائے تو یہاں سب خاندان والے سخت مخالف تھے، شاید شادی کی وجہ سے۔ گھر میں دو چار خادم مرد تھے اور ان بیچاروں کی روٹی بھی گھر والوں نے بند کر رکھی تھی۔ گھر میں عورت کوئی نہ تھی، صرف میرے ساتھ فاطمہ بیگم تھیں، یہ خادمہ دہلی سے ساتھ آئی تھیں۔ نہ وہ کسی کی زبان سمجھتی تھیں نہ ان کی کوئی سمجھے۔ شام کا وقت بلکہ رات تھی جب ہم پہنچے، تنہائی کا عالم، غیر وطن، میرے دل کی عجیب حالت تھی اور روتے روتے میرا برا حال تھا۔ نہ کوئی اپنا تسلی دینے والا، نہ منہ دھلانے والا، نہ کھلانے والا، اکیلی حیرانی پریشانی میں آن کر اتری۔ کمرے میں ایک چارپائی پڑی تھی جس کی پائنتی پر ایک کپڑا پڑا تھا، اس پر تھکی ہاری جو پڑی ہوں تو صبح ہو گئی۔ اگلی صبح حضور نے ایک خادمہ کو بلوایا اور گھر میں آرام کا سب سامان کر دیا۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں جان کو ایک بہت بڑی عزت یہ عطا کی تھی کہ اماں جان کے اپنے خاندان کے ایک بزرگ کو اس شادی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس شادی کے متعلق الہام ہوا، گویا یہ شادی خدا کی عین مرضی کے مطابق تھی۔ ان باتوں کی وجہ سے، دوسرے آپ کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ سے بہت محبت کرتے اور آپ کی بہت عزت اور قدر کرتے تھے، اور انہیں اپنے لیے ایک مبارک وجود سمجھتے۔ حضرت اماں جان کو بھی اس بات کا بہت احساس تھا اور بعض دفعہ بڑی محبت اور ناز سے کہا کرتی کہ میرے آنے کے ساتھ آپ کی زندگی میں برکتوں کا دور شروع ہوا ہے۔ اس پر حضور مسکرا کر جواب دیتے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ حضرت اماں جان بھی حضور سے بہت محبت کرتی تھیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دو سینوں میں ایک ہی دل دھڑک رہا ہو۔ جس طرح عام میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، ویسے ان دونوں میں کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ حضور حضرت اماں جان کے ساتھ پیار سے نرم لہجے میں بات کیا کرتے۔ گھر کے کاموں میں کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی تو آپ کچھ نہ کہتے۔ ایک واقعہ حضرت اماں جان نے خود سنایا کہ میں پہلے پہل جب دہلی سے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گڑ والے چاول بہت پسند ہیں۔ میں نے بڑے شوق سے ان کے پکانے کا انتظام کیا، تھوڑے سے چاول منگوائے اور اس میں چار گنا گڑ ڈال دیا، وہ بالکل راب بن گئے۔ جب دیگچی چولہے سے اتاری اور چاول برتن میں نکالے تو دیکھ کر سخت رنج اور صدمہ ہوا کہ یہ تو خراب ہو گئے۔ ادھر کھانے کا وقت ہو گیا تھا، حیران تھی کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں حضرت صاحب آ گئے، میرے چہرے کو دیکھا جو رنج اور صدمے سے رونے والوں کا سا بنا ہوا تھا۔ آپ دیکھ کر ہنسے اور فرمایا، کیا چاول اچھے نہ پکنے کا افسوس ہے؟ پھر فرمایا، نہیں، یہ تو بہت مزیدار ہیں، میری پسند کے مطابق پکے ہیں، ایسے ہی زیادہ گڑ والے تو مجھے پسند ہیں، یہ تو بہت ہی اچھے ہیں، اور پھر بہت خوش ہو کر کھائے۔ حضرت اماں جان فرماتی تھیں کہ حضرت صاحب نے مجھے خوش کرنے کو اتنی باتیں کی کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اماں جان کو خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان سمجھتے تھے، اور جو بات بھی وہ کرنے کو کہتی پوری کوشش فرماتے کہ وہ پوری ہو جائے۔ ویسے بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیویوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ حضور کی مہربانیوں کی ایک مثال آپ کو سناؤں۔ ایک دفعہ دارالمسیح کے اس حصے میں جہاں حضور رہتے تھے وہاں ایک صحن ہے جس کی ایک کھڑکی جنوب کی طرف محلہ کوچہ بندی میں کھلتی ہے۔ گرمیوں میں رات کو حضور اور آپ کے سب گھر والے اس صحن میں سویا کرتے تھے، لیکن برسات کے موسم میں جب بارش ہوتی تو مشکل یہ پڑ جاتی کہ ساری چارپائیاں اٹھا کر کمروں میں لے جانی پڑتیں۔ اس واسطے حضرت اماں جان نے یہ مشورہ دیا کہ اس صحن کے ایک حصے پر چھت ڈال دی جائے، یعنی برآمدہ سا بنا دیا جائے تاکہ بارش ہونے پر چارپائیاں اس کے اندر کی جا سکیں۔ حضور نے حکم فرما دیا کہ ایسا ہی کیا جائے۔ حضرت مولوی عبدالقیم صاحب اور چند دوسرے رفقا نے اعتراض کیا کہ ایسا نہ کریں، صحن کی شکل خراب ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے سب کی باتیں سن کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میری بیوی خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے اور میرے ان بیٹوں کی ماں ہے جن کے متعلق خدا نے مجھے بشارتیں دی ہیں، اس لیے میں اس کی ہر بات مانتا ہوں، یہ برآمدہ بننا چاہیے۔ حضرت اماں جان خود اپنا ایک واقعہ سنایا کرتی تھیں کہ جب وہ نئی نئی قادیان آئیں تو انہیں روشنی میں سونے کی عادت تھی، جب آپ سو جاتی تو حضور روشنی بجھا دیتے، پھر آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ اندھیرا دیکھ کر گھبرا اٹھتی اور حضرت صاحب دوبارہ روشنی کر دیتے۔ آخر حضور کو ہی روشنی میں سونے کی عادت پڑ گئی، پھر تو یوں ہوا کہ گھر کے ہر کونے میں روشنی رہنے لگی۔ سیڑھیاں کیا، غسل خانہ کیا، کمرہ کیا، صحن کیا، سب جگہ روشنی کی جاتی اور اس کے لیے خاص خادم رکھا گیا۔ کبھی کبھار حضرت اماں جان محبت سے حضور کو یاد دلایا کرتی کہ آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ روشنی میں سو نہ سکتے تھے، اور اب گھر کے کونے کونے میں روشنی نہ ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی۔ حضرت صاحب یہ بات سن کر ہمیشہ خوشی سے مسکرا اٹھتے۔ بچو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اماں جان کو جتنے لوگوں نے بھی قریب سے دیکھا، مثلا حضرت اماں جان کے دونوں بھائی، آپ کی اولاد، بہوئیں اور خادمائیں وغیرہ، سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں عام میاں بیوی کی طرح نہ تھے۔ آپ دونوں میں کبھی آپس میں جھگڑا نہ ہوتا، کسی بات پر لڑائی نہ ہوتی۔ ادھر حضور حضرت اماں جان کی ہر بات مانتے اور پیار اور احسان کا سلوک کرتے، تو ادھر حضرت اماں جان بھی حضور کی چھوٹی سی چھوٹی پسند ناپسند کا خیال رکھتی، کھانا بھی اکثر خود پکاتی یا پھر سامنے بیٹھ کر اپنی نگرانی میں پکواتی، آپ کے دوسرے کاموں میں بھی اس طرح آپ کا ہاتھ بٹاتی جیسے کوئی دوست اپنے دوست کا کام کر رہا ہے۔ حضور حضرت اماں جان کو تم کہہ کر بلاتے اور اردو زبان، جو کہ اماں جان کی زبان تھی، اس میں باتیں کرتے، کبھی کبھی پنجابی بھی بول لیا کرتے۔ حضرت اماں جان بھی آپ کو عزت سے حضور یا حضرت صاحب کہہ کر بلایا کرتی۔ غرض، یہ جوڑا بے مثال تھا اور آپس کی محبت ایسی تھی جو عام دیکھنے میں نہیں آتی۔ ایک بار جب حضرت اماں جان نماز پڑھنے لگیں تو نیت باندھنے سے پہلے آپ نے حضرت اقدس سے کہا، میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے آپ کا غم نہ دکھائے اور مجھے آپ سے پہلے اٹھا لے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ تم میرے بعد زندہ رہو اور میں تم کو سلامت چھوڑ جاؤں۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت اما جان سے 44 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر حضرت اما جان کا صبر۔ مئی 1908 کی 26 تاریخ تھی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ حضرت اما جان تڑپ تڑپ کر دعائیں کر رہی تھیں، کبھی سجدے میں گر جاتی، کبھی بے قراری سے ٹہل کر دعا کرتی کہ اے حیو قیوم خدا، میری زندگی بھی تو ان کو دے دے، میری زندگی بھی تو ان کو دے دے۔ لیکن الہی تقدیر کے مطابق آپ کا وقت آن پہنچا تھا۔ جب آپ پر نزع کی حالت شروع ہو گئی تو حضرت اما جان نے دعا کی، اے میرے پیارے خدا، یہ تو ہمیں چھوڑتے ہیں لیکن تو ہمیں نہ چھوڑیو۔ آپ بار بار یہ الفاظ کہتی جاتی تھیں۔ آخر 10 بجے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سب کو تڑپتا چھوڑ کر اپنے آسمانی آقا سے جا ملے۔ حضرت اما جان نے اس وقت ایسا صبر کا نمونہ دکھایا جس کی مثال نہ مل سکے گی۔ دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا لیکن زبان پر صرف انا للہ تھا اور بس۔ بلکہ وہاں پر موجود کچھ عورتوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کیا تو آپ نے بڑے زور سے انہیں ڈانٹا اور فرمایا، میرے تو خاوند تھے، میں نے روتی، تم رونے والی کون ہو؟ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور انہیں نصیحت فرمائی، بچوں، گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے، انہوں نے آسمان پر تمہارے لیے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت پر ملتا رہے گا۔ حضور کا جنازہ لاہور سے قادیان لے جایا گیا، بٹالے سے بیل گاڑی پر رکھا گیا۔ حضرت اما جان بھی رتھ پر سوار ساتھ ہی تھیں۔ حضرت بھائی عبد الرحمان صاحب قادیانی ڈیوٹی پر ساتھ تھے۔ آپ سارا راستہ دعاؤں میں مشغول رہیں۔ جنازے کو بہشتی مقبرے کے ساتھ والے باغ میں رکھا گیا۔ حضرت اما جان چہرہ مبارک دیکھنے آئیں تو پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر نہایت وقار والی آواز میں بولیں، تیری وجہ سے میرے گھر میں فرشتے اترتے تھے اور خدا کلام کرتا تھا۔ یہ گواہی تھی جو حضرت اما جان نے حضرت اقدس کی سچائی کی دی، اور اس سے آپ کے ایمان کی مضبوطی اور حضرت اقدس علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان رکھتی تھیں اور آپ کے دعویٰ اور الہامات کو سچا مانتی تھیں۔ کبھی بھی کسی قسم کا شک یا شبہ آپ کے دل میں پیدا نہ ہوا۔ تو بچوں، حضرت اما جان پہلے دن سے ہی حضرت صاحب پر ایمان لے آئی تھیں اور دعوے سے پہلے بھی آپ کو بزرگ مانتی تھیں۔ اس جگہ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں جو اما جان نے اپنی بیٹی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کو سنایا۔ فرمانے لگیں کہ جب میں پہلی مرتبہ نئی آئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بات کا مجھ پر بہت اثر ہوا، اور وہ یہ کہ خادمہ دودھ ابال رہی تھی۔ جب دودھ میں جوش آ رہا تھا تو اس نے ڈھکن اتار دیا۔ اتفاق سے حضرت اقدس کی نظر پڑ گئی اور آپ نے فرمایا، دودھ ننگا ہے، یہ ضرور پھٹ جائے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کے ابال کے وقت ڈھکن اتار ہی دیتے ہیں، یہ دودھ بھلا کیوں پھٹے گا؟ مردوں کو کچھ خبر نہیں ہوتی اس لیے ایسا کہہ دیتے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال گزر ہی رہا تھا کہ اسی وقت دودھ پھٹ گیا۔ اس واقعے سے میرے دل میں حضرت اقدس علیہ السلام کا بہت روب طاری ہوا اور میں نے یقین کر لیا کہ یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد اما جان بالکل بدل گئیں۔ آپ کا سکون اور اطمینان جاتا رہا، اس کی جگہ گھبراہٹ اور بے چینی نے لے لی۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے آپ کی زندگی کے بارے میں لکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی، پھر میں نے آپ کو پرسکون اور مطمئن اور خاموش نہیں دیکھا۔ ہم بچوں کی وجہ سے بہت صبر دکھاتی لیکن طبیعت میں بے حد گھبراہٹ اور بے قراری پیدا ہو گئی تھی جو پھر کبھی نہ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے آپ اس دنیا میں ہیں بھی اور نہیں بھی۔ آپ ایسے بے چین رہتی جیسے آپ کا کچھ کھو گیا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے حضرت اماں جان کی غیر معمولی محبت کے بارے میں حضرت مبارکہ بیگم صاحبہ لکھتی ہیں کہ آپ اکثر سفر پر جاتی تھیں اور بظاہر اپنے آپ کو بہت بہلائے رکھتی، عورتوں کو ساتھ لے کر باغ کی یا گاؤں کی سیر کو نکل جاتی، گھر میں کچھ نہ کچھ کام کرواتی رہتی، کھانا پکواتی اور اکثر غریبوں میں تقسیم کرتی، لوگوں کا آنا جانا رہتا، اپنی اولاد کی دلچسپیاں تھیں، یہ سب کچھ تھا، مگر حضور کے بعد پورا سکون آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا، صاف معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اپنا وقت کاٹ رہا ہے، ایک سفر ہے جسے طے کرنا ہے، کچھ کام ہیں جو جلد ہی کرنے ہیں، ظاہر میں ایک صبر کی چٹان تھیں لیکن ایک قسم کی گھبراہٹ تھی جو آپ پر ہر وقت طاری رہتی، لیکن بچوں کی خاطر اپنا یہ غم چھپائے رکھتیں اور سب کی خوشی کا سامان کرتی تھیں، جب کوئی بچہ خاندان میں پیدا ہوتا تو خوشی کے ساتھ حضرت اقدس کی جدائی کا غم بھی تازہ ہو جاتا اور آپ اس بچے کی آمد پر حضرت اقدس کو بہت یاد کرتی۔ میں اپنے لیے ہی دیکھتی کہ حضرت صاحب کی وفات کے بعد ایک محبت کا چشمہ ہے جو اماں جان کے دل میں پھوٹ پڑا ہے اور بار بار فرمایا کرتی کہ تمہارے ابا تمہاری ہر بات مان لیا کرتے، اور میرے اعتراض کرنے پر فرماتے کہ لڑکیاں تو چار دن کی مہمان ہوتی ہیں، یہ کیا یاد کرے گی، جو یہ کہتی ہے وہی کرو۔ غرض یہ محبت بھی حضرت صاحب کی محبت تھی جو آپ کے دل میں موجود تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بے حد خواہش تھی کہ آپ حج کریں لیکن حالات کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ حضرت اماں جان نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی اس خواہش کو یاد رکھا اور اس طرح پورا کیا کہ ایک صاحب کو اپنے پاس سے رقم دے کر حضرت اقدس کی طرف سے حج کرنے بھیجا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب حضرت صاحب کی یاد آتی تو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتی۔ آپ اور بھی کئی طرح سے حضرت اقدس کی یادیں زندہ رکھتیں۔ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ روزانہ صبح بہشتی مقبرے جا کر حضرت اقدس کے مزار پر دعا کیا کرتیں، حضور کو جو کھانے پسند تھے وہ پکوا کر یا خود پکا کر لوگوں کو کھلاتیں اور فرماتیں کھاؤ، یہ حضرت صاحب کو بہت پسند تھا۔ حضرت اماں جان کو قادیان سے بھی بہت محبت تھی۔ جب پاکستان بننے کے بعد حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ مستقل طور پر ربوہ تشریف لے آئے تو ساتھ محترمہ آمنہ صاحبہ بیگم چودھری عبداللہ خان صاحب بھی اماں جان کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس مکان میں ہم نے کھانا کھایا حضرت اماں جان اس کے برآمدے میں تشریف رکھتی تھیں، میں جا کر پاس بیٹھ گئی، باتوں باتوں میں کچھ ایسا فکرہ میں نے کہا جس کا مطلب تھا ربوہ قادیان جیسا لگتا ہے، یہ قادیان کا غم دور کر دے گا۔ حضرت اماں جان میرے پاس لیٹی ہوئی تھیں، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئیں، میرے کندھے کو ذرا جھٹک کر رنج سے بولیں، تم اس جگہ کو بھول جاؤ گی جہاں حضور دفن ہے؟ ایک بار حضرت اماں جان مکرم عبداللہ صاحب کے گھر نیلا گنبد لاہور تشریف لے گئیں، ان کے گھر والوں نے آپ سے کہا کہ یہ گھر بہت تنگ ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر مکان عطا کرے۔ یہ سن کر حضرت اماں جان نے فرمایا نہیں، یہ مکان تمہارے لیے بڑا برکت والا ہے کیونکہ یہاں حضور تشریف لا چکے ہیں، اس مکان کو نہ چھوڑنا۔ گویا آپ کو وہ مکان جن میں کبھی حضور تشریف لے گئے تھے، وہ راہیں جن پر آپ کے قدم مبارک پڑے تھے، ان سب سے محبت تھی اور آپ انہیں برکتوں والا خیال کرتی۔ حضرت اماں جان کی ہر بات ہر کام یہ ظاہر کرتا تھا کہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کتنی محبت اور عقیدت تھی، آپ کے رفقاء اور سچے پیار کرنے والے خادموں اور ان کی اولاد سے بھی بہت محبت رکھتی تھیں اور ان کی معمولی معمولی باتوں کا بھی خیال رکھتی جیسے ایک ماں اپنے بچوں کا رکھتی ہے۔ یہاں ہم آپ کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا سنایا ہوا ایک واقعہ بتاتے ہیں جس سے حضرت اماں جان کے ایمان کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا سے علم پا کر محمدی بیگم والی پیشگوئی فرمائی تو حضور نے دیکھا کہ حضرت اماں جان علیحدگی میں نماز پڑھ کر رو رو کر دعا کر رہی ہیں۔ بعد میں آپ نے پوچھا کہ کیا دعا کر رہی تھیں؟ حضرت اماں جان نے جواب میں بتایا میں یہ کہہ رہی تھی خدایا تو اس پیش گوئی کو اپنے فضل اور قدرت سے پورا فرما۔ آپ نے فرمایا تم یہ دعا کر رہی تھی اور تم جانتی ہو کہ اس کے نتیجے میں تم پر سوکن آنی ہے؟ حضرت اماں جان نے بے ساختہ فرمایا خواہ کچھ ہو، مجھے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں، میری خوشی اسی میں ہے کہ خدا کی بات اور آپ کی پیش گوئی پوری ہو۔ سوتیلے رشتہ داروں سے سلوک۔ جب آپ شادی کے بعد قادیان آئیں تو وہاں سب رشتہ داروں کو حضور کے خلاف دیکھا، یہاں تک کہ جو چند خادم تھے ان کے خلاف بھی گھر والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ حضور کا تعلق اپنی پہلی بیوی سے ان کے سلوک کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر تھا اور آپ کوئی 20 سال سے علیحدہ زندگی گزار رہے تھے۔ گھر کی رشتہ دار عورتوں کا یہ حال تھا کہ وہ یہ بھی پسند نہ کرتی کہ کوئی حضرت صاحب کو کھانے کی چیز ہی تحفے کے طور پر بھیج دے اور نہ ہی خود کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ ان حالات میں حضرت اماں جان کا بیاہ کرانا اور برا لگا، لیکن اماں جان نے سب کچھ بھلا کر سب سے اچھا سلوک کیا اور حضور سے اجازت لے کر आपकी पहली बीवी, बच्चों और भावज वगैरह से मिलना शुरू कर दिया। आप सबका बहुत ख्याल रखती और ज़रूरत के वक्त उनके काम आती और हर तरह से मदद फरमाती। हज़रत महजान ने खुद ये वाक़या बताया कि एक दफ़ा हज़रत मिर्ज़ा सुल्तान अहमद की वालिदा बीमार हुई तो वो उन्हें पूछने गईं। वापस आकर हज़रत साहब से जिक्र किया कि उन्हें ये तकलीफ़ है। पहले आप खामोश रहे, फिर दूसरी मरतबा कहने पर फरमाया, मैं तुम्हें दो गोलियां देता हूँ, ये दे आओ, मगर अपनी तरफ से देना, मेरा नाम दरमियान में ना आए। हज़रत महजान फरमाती थी कि और भी कई दफ़ा हजूर ने इशारों इशारों में मुझसे कहा कि मैं ऐसे तरीक पर कि हज़रत साहब का नाम ना आए अपनी तरफ से मदद कर दिया करूं, सो मैं कर दिया करती थी। हज़ारों कहानियां आपने सुनी होंगी जिनमें सोकनों के आपस के झगड़े और सुतेली माओं के खौफनाक सलूक का जिक्र किया जाता है, लेकिन हज़रत अम्मा जान चूँकि आम औरतों से मुख्तलिफ थीं, एक तो खुद भी नेक और मुत्तकी थीं और बुलंद हौसला रखती थीं, दूसरे हजूर की सोहबत और तरबियत का असर कि आपने बावजूद दुश्मनियों के हज़रत साहब के रिश्तेदारों और अपने सुतेले बच्चों और सौकन से हमेशा अच्छा सलूक रखा। हज़रत अम्मा जान का मकाम खुदा की नज़र में, अपने पाक इरादों और नेक कामों की बरकत से अपने खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली थी और आपके मुतालिक अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को बहुत से इल्हाम किए। मसलन एक इल्हाम में अल्लाह ताला ने हज़रत अकदस को अपनी इस मुबशर बीवी की सेहत के लिए खुद दुआ सिखाई, रब्बे असलह ज़ौजती हाज़िही, यानी ऐ मेरे खुदा मेरी इस बीवी को बीमार होने से बचा और बीमारी से तंदुरुस्त कर। इस रिश्ते को खुदा ने काबिल शुक्र इनाम करार दिया और फरमाया, उस खुदा की तारीफ है जिसने दामादी और नसब हर दो की रूह से तुम पर एहसान किया। आपकी उम्र के बारे में ये इल्हामी दुआ सिखाई गई, ऐ मेरे रब मेरी उम्र में और मेरी साथी की उम्र में गैर मामूली ज्यादती फरमा, और ये दुआ गैर मामूली तौर पर पूरी हुई। आपने बहुत लंबी उम्र पाई और जैसा कि एक इल्हाम में ये बताया गया था कि तू दूर तक की नस्ल देखेगा, आपकी नस्ल का ये सिलसिला हज़रत अम्मा जान से चलना था, इसलिए आप भी इस्लाम की दूसरी मुखातब थीं और ये इल्हाम आपने बड़ी शान से पूरा होते देखा। हज़रत अम्मा जान को खुदा का साथ हासिल था, इल्हाम है कि मैं तेरे और तेरी बीवी के साथ हूँ, यानी इल्हामन भी अल्लाह ताला का साथ आपको हासिल था। आपकी शादी के बाद अल्लाह ताला ने हजूर को मुखातब करके फरमाया, मेरी इस नेमत को याद रख जो मैंने तुझ पर की है, मैंने तेरे लिए खुद अपने हाथ से अपनी रहमत और कुदरत का ये दरख्त लगाया। आपकी औलाद, अल्लाह ताला ने आपको 10 बच्चे अता किए, 5 कम उम्र में फौत हो गए और 5 ने इल्हामों के मुताबिक लंबी उम्र पाई। जो बच्चे कम उम्र में फौत हुए उनके नाम ये हैं, सबसे बड़ी बेटी साहबजादी इस्मत साहिबा, पैदाइश 15 अप्रैल 1886, वफात जुलाई 1891। नंबर 2 बशीर अव्वल, पैदाइश 7 अगस्त 1887, वफात 4 नवंबर 1888। नंबर 3 साहबजादी शौकत साहिबा, पैदाइश 1891, वफात 1892। नंबर 4 साहिबजादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब, पैदाइश 14 जून 1899, वफात 16 सितंबर 1907। 5 साहिबजादी अमतुल नसीर साहिबा, 28 जनवरी 1903 में पैदा हुईं और 3 दिसंबर 1903 को फौत हो गईं। जिन बच्चों को अल्लाह ताला ने लंबी ज़िंदगी दी और आगे नस्ल चलाई और उनके मुतालिक हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पांचों जो के नस्ले सैयदा हैं, ये सब मुबशर औलाद हैं, इन सब का मुख्तसर तारुफ ये है। नंबर 1 हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, 12 जनवरी 1889 को आपकी पैदाइश हुई। आप जमात अहमदिया के दूसरे इमाम बने। आपके मुतालिक फजल उमर और मुस्लिह मौत के इल्हाम हुए। एक लंबा अरसा दीन की खिदमत करने के बाद 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात 1965 में वफात पा गए। नंबर 2 हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब MA, 20 अप्रैल 1893 को पैदा हुए। लंबी उम्र पाने के बाद सितंबर 1963 में वफात पाई। आपने तमाम उम्र सिलसिले की खिदमत में गुजार दी। नंबर 3 हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब, आप 24 मई 1895 को पैदा हुए। आपके मुतालिक एक इल्हाम ये था, वो बादशाह आया, आपने भी लंबी उम्र पाई और सिलसिले की खिदमत में लगे रहे। आपकी वफात दिसंबर 1961 में हुई। नंबर 4 हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा, आप 2 मार्च 1897 को पैदा हुई। आपके मुतालिक मशहूर इल्हाम ये है, नवाब मुबारका बेगम, आप बहुत दुआगो, आलिम फाजिल और साबिर व शाकिर खातून थीं, खिदमत दीन में लगी रहतीं। आपकी वफात 23 मई 1977 को हुई। नंबर 5 हज़रत साहिबजादी अमतुल हफीज़ बेगम साहिबा, 25 जून 1904 को पैदा हुई। आपके मुतालिक मशहूर इल्हाम है, दुख्ते किराम, आपकी वफात 6 मई 1987 को हुई। आपके इन 5 बच्चों को खुदा ताला ने लंबी उम्र से नवाजा, इन सब को औलाद भी अता की और अम्मा जान ने अपनी दूर की नस्ल भी देखी, यानी अपने पड़पोते पड़पोतियाँ पड़नवासे और पड़नवासियाँ देखीं। यहाँ तक कि जब आपकी वफात हुई तो आपकी जिंदा नस्ल की तादाद 111 थी और 20 फौत हो चुके थे, यानी कुल औलाद 131 है। ये एक बहुत ही गैरमामूली तादाद है जो किसी को अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से देखनी नसीब हुई। आपको खुदा ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, आपके खाविंद खुदा के मामूर थे। खुदा ताला ने आपके बड़े बेटे को जमात अहमदिया की इमामत अता की और मुस्लिह माउद का खिताब दिया। 1944 में जब हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने मुस्लिह माउद होने का दावा किया तो हज़रत अम्मा जान ने इजहार तशक्कुर के तौर पर तहरीर किया, मैं अपने खुदा का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ कि उसने मुझ नाचीज़ को अपने पाको बुजुर्ग मसीह की ज़ौजियत के लिए चुना और मेरे सर को अपने इंतहाई इनाम के ताज से मुज़य्यन फरमाया, और फिर मैं अपने खुदा का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ कि उसने मेरे बेटे महमूद को मुस्लिह माउद के मकाम पर फायज़ करके मेरी उम्र के आखिरी हिस्से में मुझे एक दूसरा ताज अता किया। बस मुझे मेरे ऊपर की तरफ से भी ताज मिला और मेरे नीचे की तरफ से भी, और ये मेरे खुदा का सरासर फजल व एहसान है जिसमें मेरी किसी ख्वाहिश और किसी अमल और किसी इस्तेहकाक का ज़रा भर भी दखल नहीं, और ये दो ताज मेरा ही हिस्सा नहीं है बल्कि मेरी प्यारी जमात भी इनमें मेरे साथ बराबर की हिस्सेदार है। मगर खुदा का हर खास व आम इनाम अपने साथ खास जिम्मेदारियों को भी लाता है और मेरी ये दुआ है कि खुदा ताला मुझे भी और जमात को भी इन अहम जिम्मेदारियों के पूरा करने की तौफीक दे जो उसकी तरफ से हम पर आयद की गई हैं। ऐ हमारे खुदा, तू ऐसा ही कर। आमीन। वस्सलाम। उम्मे महमूद, 5 अप्रैल 1944। फिर एक और इनाम अल्लाह ताला ने आपकी वफ़ात के बाद आपको अता किया कि आपका वो पोता जिसके मुतालिक हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ, नाफिलत अल्लक, उसको आपने अपना बेटा बनाकर खुद ही परवरिश की और अपने हाथों से तरबियत दी। अल्लाह ताला ने उसे भी जमात अहमदिया का तीसरा इमाम बना दिया, यानी हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला। इनकी वफ़ात के बाद आपके ही एक और पोते हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह ताला को जमात अहमदिया का चौथा इमाम मुकरर किया, और अब अल्लाह ताला ने आपके पड़पोते और हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब के पोते हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ को 5वां इमाम मुकरर फरमाया है। सीरत व अखलाक। आपको अल्लाह ताला ने क्यों अपने मामूर के लिए चुना, ये बात आपकी सीरत पर एक नज़र डालकर ही पता चल जाती है। आपकी सीरत की नुमायां बात आपकी इबादत है। आप 5 वक्त की नमाजें बाकायदगी और बड़ी तवज्जो और अहतमाम से पढ़ती थीं। सिर्फ फ़र्ज़ नमाजें ही नहीं बल्कि नमाज तहज्जुद और नमाज ज़ुहा की भी पाबंद थीं। नफलों के अलावा भी जब मौका मिलता आप दिल का सुकून नमाज ही में हासिल करती थीं। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब फरमाया करते कि ये जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा कौल है कि मेरी आँख की ठंडक नमाज में है, ये हज़रत अम्मा जान को भी विरसे में मिला था। नमाजों के अलावा भी ये हाल था कि हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते बुलंद आवाज़ में दुआएं किया करतीं। बाज़ दफ़ा बैठे बैठे एकदम ज़ोर से कहतीं या अल्लाह और दुआ शुरू कर देतीं, और इस कदर तड़प होती थी कि पास बैठने वाला भी बेख्तियार आपकी दुआ में शामिल हो जाता। हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा फरमाया करतीं कि इस तरह बेकरार होकर दुआ आपके होंठों से निकलती जैसे दम घुटकर रुका हुआ सांस दोबारा चलता है। कभी कभी मिसरे या शेर की सूरत में दुआ किया करती। एक बार लाहौर में एक गैर आबाद मस्जिद को देखकर आह भर के फरमाया, इलाही मस्जिदें आबाद हों, गिर जाएं गिर जाएं। गिर जाएं जो है ये गिरजा की जमा है जो कि ईसाइयों की इबादतगाह को कहते हैं। आपकी दुआ में पूरी जमात शामिल होती, सबके लिए दुआ करती, अक्सर के नाम लेकर बड़ी बेकरारी से दुआ करती। एक बार लेटे लेटे इस तरह या अल्लाह कहा कि मैं घबरा गई, मगर इसके बाद ये जुमला कहा, मेरे नैयर को बेटा दे, और खुदा ने आपके नैयर को 2 बेटे अता किए। आप सही मानों में पूरी जमात की माँ थीं। आप ना सिर्फ खुद नमाजों की पाबंदी करतीं बल्कि दूसरे लोगों को भी इसकी ताकीद करती रहतीं। कोई ख़ास बात होती, चाहे वो अपने लिए हो या किसी और के लिए, तो सबसे दुआ करवातीं, ख़ास तौर पर बच्चों से ज़रूर दुआ करवातीं, और फरमाया करती थीं कि बच्चे मासूम होते हैं इसलिए खुदा बच्चों की दुआ बहुत सुनता है। एक वाक़या खान बहादुर चौधरी अबुल हाशिम खान साहब की बीवी ने सुनाया कि एक दफ़ा वो अपनी पहली बेटी की पैदाइश के बाद हज़रत अम्मा जान के पास दुआ के लिए कहने गईं। नमाज का वक्त हो गया और जब अम्मा जान नमाज पढ़कर दोबारा वापस आईं तो इनसे पूछा, लड़कियों क्या तुमने नमाज पढ़ ली? उन्होंने जवाब दिया, बच्चे ने पेशाब वगैरह किया हुआ है, घर जाकर पढ़ेंगी। इस पर फरमाया, बच्चों के बहाने से नमाज ज़ाय ना किया करो, इस तरह बच्चे खुदा ताला की नाराज़गी की वजह बनते हैं। बच्चा तो खुदा का इनाम है। आप अक्सर फरमाती कि दुआ ज़ाय नहीं जाती, अगर एक रंग में कबूल ना हो तो दूसरे रंग में कबूल हो जाती है या इबादत में शुमार होती है। कादियान में हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के घर में एक छोटा सा कमरा है जिसे बैतुद्दुआ कहते हैं। ये हजूर और अम्मा जान के कमरे के साथ बना हुआ है और इनके कमरे से ही उस कमरे को रास्ता जाता है। अम्मा जान ने इसके दरवाजे से लेकर दाखिले के दरवाजे तक एक रस्सी बांधकर उस पर पर्दे लटकाए हुए थे और इन पर्दों के पीछे अपना पलंग लगाया हुआ था ताकि बैतुद्दुआ में आने जाने वाले लोग आराम से जा सकें और बेपर्दगी या तकलीफ ना हो। जमात में से जो कोई भी बैतुद्दुआ जाना चाहता आप बड़ी खुशी से इसकी इजाज़त दे देती। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस कमरे में नफल पढ़ते और दुआएं किया करते, इसलिए इसका नाम बैतुद्दुआ रखा गया। एक बार एक खातून आई और बैतुद्दुआ में नमाज पढ़ने की इजाज़त चाही। आपने हंसकर फरमाया, हमने कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ। फिर जब वो खातून कमरे में दाखिल होने लगी तो फरमाया, हाँ एक टैक्स है, मेरे लिए दुआ करना। एक बार महाशा मोहम्मद उमर साहब मौलवी फाजिल का इम्तिहान देने से पहले बैतुद्दुआ में दुआ करने की गरज से आए। हज़रत अम्मा जान से इजाज़त मांगी, आपने कहा 8 और 9 के दरमियान आ जाना। वो कहते हैं मैं वक्त पर हाजिर हो गया। दरवाजा खटखटाया, एक मुलाजमा निकली, पूछने पर बताया कि हज़रत अम्मा जान की इजाज़त से बैतुद्दुआ में दुआ करने हाजिर हुआ हूँ। खादमा ने कहा, बाज़ ख़वातीन को अम्मा जान ने वहाँ खाने पर बुलाया हुआ है, आप कल सुबह आ जाएं। मैंने कहा, आप अम्मा जान से अर्ज़ कर दें कि मैं आज ही इम्तिहान देने जा रहा हूँ। इस पर वो खादमा अंदर चली गई और वापस ना आई। आखिर फिर दरवाज़ा खटखटाया तो माई काकू साहबा बाहर आईं। मैंने सारी बात उनसे अर्ज़ की। मेरी बात सुनकर वो अंदर चली गईं और थोड़ी ही देर में आकर बताया कि हज़रत अम्मा जान ने फरमाया है, हमने दावत का वक्त 9:30 कर दिया है, आप अब दुआ के लिए अंदर जा सकते हैं। इस तरह आप हर एक की ख्वाहिश को पूरा करती थीं। आप अक्सर ये दुआएं बुलंद आवाज में पढ़ा करती थीं, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, या हय्यो या क़य्यूमो बिरहमतिका अस्तगीसो, या रब्बी व रब्ब अस्समावाति वल अर्ज़। जब कादियान से हिजरत करके आए तो आप ये दुआ भी बहुत पढ़ती थीं, या हफीज़ो या अज़ीज़ो या रफ़ीको रब्बे कुल्लो शैइन खादिमो का रब्बे फ़ाफ़ज़ना वंसुरना वरहमना। हम बच्चों को भी ये दुआ सिखा दी थी और फरमाया करती थी कि ये दुआ बहुत पढ़ा करो, ये इस ज़माने का इसमे आज़म है, यानी सबसे बड़ी दुआ है। जब भी आप सफ़र पर जाती तो ये दुआ ज़रूर करती, बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा। खुदा ताला और उसकी किताब और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको बहुत मोहब्बत थी। कुरान करीम की तिलावत आप रोज़ाना किया करती, बल्कि अक्सर लोगों का कहना है कि आपको कोई भी तकलीफ होती या हजूर की याद आती तो आप कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देती। अपने दिल का सुकून कुरान शरीफ में ढूंढती और हासिल करती थी। जब भी कोई मुश्किल वक्त होता सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर देती और फरमाया करती थी कि ना जाने लोगों ने क्यों इतनी प्यारी सूरत को सिर्फ वफात के वक्त के लिए मुकर्रर कर दिया है। हालांकि हजूर फरमाया करते थे, तकलीफ में सूरह यासीन पढ़ी जाए तो तकलीफ दूर हो जाती है। हदीसें सुनने का बेहद शौक था। रोजाना खानदान के किसी न किसी बच्चे को बुलाकर हदीस सुना करती। कभी उन यतीम बच्चियों में से जिनको आपने खुद पाला था किसी एक को पास बिठाकर उससे हदीस पढ़वाकर सुना करती। वफात के करीब बीमारी में ये शौक इस कदर बढ़ गया था कि सुनाने वाला थक जाता लेकिन आपकी प्यास न बुझती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश करती। एक मरतबा एक आदमी ने बाग का फल, जबकि अभी आमों को बूर ही लगा था, 600 रुपये में खरीदने के लिए मुंशी साहब की मार्फत कहला भेजा। हसमा जान ने जवाब में इनकार कर दिया, ये तो नाजायज है, जब बाग को फल लग गया तो वो बहुत कम कीमत में बिका। उस आदमी ने मुंशी साहब से कहा, 600 रुपये ले लेते तो अच्छा था, अब देखो कितने कम रुपए मिले हैं। इस पर मुंशी साहब ने जवाब दिया, अम्मा जान इसको नाजायज समझती हैं, ऐसे रुपए कैसे ले लेता। कैदियों को खाना खिलाना भी सुन्नत है, इसलिए एक दफा जब हजरत अम्मा जान बटाले तशरीफ ले गईं तो आपने डॉक्टर हशमतुल्ला खान साहब से कहा कि पता करें कि यहाँ जेल के कैदियों को हमारी तरफ से उम्दा खाना खिलाने की इजाजत मिल सकती है। उन्होंने अपने किसी वाकिफ के जरिए इजाजत हासिल की और हजरत अम्मा जान ने 50 रुपये उन्हें खाना तैयार करने के लिए दिए और इस तरह कैदियों को उम्दा खाना खिलाया गया। ये शायद वो कैदी थे जो कर्ज की वजह से कैद में थे। कुदरत सानिया से गहरा ताल्लुक। कुदरत सानिया पर आपका दिल से ईमान था। इमाम वक्त की इताअत करना और उनका हर हुक्म मानना अपना फर्ज समझती थी। कुदरत सानिया के मजहरे अव्वल हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब ने इस बात की गवाही दी और फरमाया, जो इताअत मेरी मियाँ महमूद और हजरत अम्मा जान ने की है किसी ने भी नहीं की। एक बार किसी को बताया कि हजरत बीवी साहिबा, यानी हजरत अम्मा जान, कि हजरत बीवी साहिबा ने, जो कि मेरे ऐसे हालात से वाकिफ हैं, एक बार कुछ नकद रुपया मुझे दिया और कहा, ये आपके खाने के लिए है। साथ ही कुछ रकम लंगर खाने के लिए दी और कहा लेकिन दूसरे हिस्से में से ना दें। इस वाक्य से पता चलता है कि आपको इमाम वक्त के साथ कितनी अकीदत थी। इमाम जमात अहमदिया हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब आपको जो कोई काम कहते आप वो खुद कर देती। एक दफा का वाकया है, हजूर के पास कुछ लड़के पढ़ने के लिए आए हुए थे, इनमें एक देहाती भी था। एक दिन वो खाने पर रो पड़ा। पूछने पर पता चला उसे लस्सी की आदत है जो उसे मिलती नहीं। हजूर ने हज़रत अम्मा जान को कहलवाया कि ये किस्सा हुआ है, आप अपने घर से लस्सी भेज दिया करें। चुनाचे आप रोजाना उस तालिब इल्म को लस्सी भिजवा दिया करती। एक बार कुछ लिहाफ काबिले मुरम्मत थे, हजूर ने सूफी गुलाम मोहम्मद साहब अमृतसरी से फरमाया ये हज़रत अम्मा जान को भिजवा दें। ये सुनकर उन्हें बहुत रंज हुआ कि हज़रत अम्मा जान से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं। उनकी जो बुरी सी शक्ल बनी देखी तो हजरत साहब समझ गए और फरमाया उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि मैं उनको काम बता दिया करूं। हज़रत अम्मा जान ने अपने हाथ से लिहाफ मरम्मत करके भिजवा दिए। एक बार हजूर ने आपसे फरमाया आप अपनी गैर अहमदी रिश्तेदार औरतों से ताल्लुक पैदा करें और मशवरा दिया कि पहले उनके घर तशरीफ ले जाएं फिर उन्हें बुलाएं। हज़रत अम्मा जान ने अपने इमाम का हुक्म माना, उन औरतों से मिलना शुरू किया और इस तरह खुदा के फजल से बहुत सी रिश्तेदार खवातीन अहमदी हो गईं। हज़रत अम्मा जान का ये तरीक था कि जब भी आपने किसी दूसरे शहर जाना होता तो हजूर से इजाज़त लेकर जाती, और ऐसा ही हजरत मुस्लिम मौत के वक्त भी होता रहा। हजरत मुस्लिम मौत गो आपके बेटे थे लेकिन उनके इमाम जमात अहमदिया बनने के बाद हजरत अम्मा जान ने उनकी उसी तरह इज्जत और फरमा बरदारी की जैसा कि इमाम वक्त की होनी चाहिए। आपकी माली कुर्बानियाँ, सिलसिला अहमदिया के लिए आपने बहुत बड़ी बड़ी माली कुर्बानियाँ दी। जब हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने मिनारतुल मसीह बनाने की तहरीक की और आपने 101 खुदाम से फरमाया कि आप अहबाब 100-100 रुपया दें, लेकिन हजरत अम्मा जान ने 1000 रुपये का वादा लिखवाया और अपना दिल्ली का एक मकान बेचकर ये रकम अदा कर दी। जब हजरत मुस्लिम माऊद मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने तहरीक जदीद जारी फरमाई और चंदे का ऐलान किया तो हजरत अम्मा जान ने इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दफ्तर अव्वल में वफात तक 3,142 रुपए का चंदा अदा किया। इसके अलावा जो भी चंदे की तहरीक होती आप उसमें जरूर हिस्सा लेती और अच्छी खासी रकम अदा करती। मसलन सिलसिले की बियूतु जिक्र मिशन, लंगर खाना, दफ्तर लजना अमाइल्ला, बियूतु जिक्र लंदन व बर्लिन वगैरह वगैरह, लंगर खाने के लिए देगों का मुहैया करना, अखबार अलफजल के लिए इमदाद, गरज के कोई भी माली तहरीक हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में या आपके बाद ऐसी नहीं हुई जिसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना लिया हो। तरबियत औलाद के मुतालिक आपका नमूना मिसाली था। इस बारे में हजरत नवाब मुबारका बेगम साहिबा अपने तजुर्बात इस तरह बताती हैं, तरबियत के असूलों के मुतालिक मैंने बहुत से लोगों को गौर से देखा लेकिन हजरत अम्मा जान से बेहतर किसी को भी ना पाया। आपने स्कूल कॉलेज में तालीम ना पाई थी, घर में ही मामूली उर्दू लिखना पढ़ना सीखा था, लेकिन अखलाक और तरबियत के मुतालिक जो आपके असूल हैं उनको देखकर यही कहा जा सकता है कि ये महज खुदा का फजल और हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा था और इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ कहाँ से सीखा और किससे सीखा। बच्चों की तरबियत का पहला असूल ये था कि बच्चे पर मुकम्मल एतमाद जाहिर करके माँ बाप के एतबार का भरम रखना, झूठ से नफरत, गैरत दिखाना और रुपये पैसे और दुनियावी चीज़ों की परवाह ना करना आपका पहला सबक होता था। हम लोगों से भी यही फरमाती रही, बच्चे में ये आदत डालो कि वो कहना मान ले, फिर बेशक बचपन की शरारत भी आए तो कोई हर्ज नहीं, जिस वक्त भी रोका जाएगा रुक जाएगा। अगर एक बार तुमने कहना मानने की आदत डाल दी तो फिर हमेशा इस्लाह की उम्मीद रहेगी। हमें भी यही सिखा रखा था। हम लोग ये सोच भी ना सकते थे कि माँ बाप की गैर मौजूदगी में उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करें। हज़रत अम्मा जान हमेशा ये फरमाया करती, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। यही एतबार हमें हमेशा झूठ से बचाता था, बल्कि इससे और नफरत आती थी। मुझे आपका सख्ती करना कभी याद नहीं। आप ये भी फरमाया करती कि पहले बच्चे की तरबियत पर पूरा जोर लगाओ, दूसरे बच्चे इसका नमूना देखकर खुद ही ठीक चलेंगे। हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहमतुल्ला, जिनकी तरबियत अम्मा जान की गोद में हुई, फरमाते कि हज़रत अम्मा जान का ये असूल था कि बच्चों को मगरिब के बाद घर से बाहर ना रहने देती। इस असूल की सख्ती से पाबंदी फरमाती। ये हुक्म था कि मगरिब की नमाज पढ़कर सीधे घर आओ, फिर बाहर नहीं जाना सिवाय ईशा की नमाज के लिए, और बड़े होने तक यही पाबंदी रहती। और हज़रत अम्मा जान की तरबियत का अंदाज बिल्कुल अलग था। आप डांट टपट कर बिल्कुल कोई बात ना कहती। एक बार हज़रत अम्मा जान ने कुछ बच्चों को खाने पर बुलाया। उस जमाने में जमीन पर ही दस्तरखान बिछा दिया जाता और सब बैठकर खाना खाते। मुझे भी कहा कि आओ सबके साथ खाना खाओ। मेरी उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी और जैसा कि बच्चे जिद करते हैं मैंने भी बचपन की नासमझी की वजह से इनकार कर दिया। हज़रत अम्मा जान ने डांटने के बजाय फरमाया, अच्छा ना खाओ, लेकिन याद रखना कि फिर बाद में खाना नहीं मिलेगा। आखिर कुछ देर झिझकने के बाद मैं भी उन बच्चों के साथ शामिल हो गया। हज़रत अम्मा जान तरबियत करने के लिए इस बात का भी ख्याल रखती कि घर के बच्चे और दूसरी यतीम लड़कियां जो आपके घर में पल रही थीं, अच्छी आदतों वाले बच्चों के साथ ही खेलें, ताकि उनमें किसी दूसरे गंदे बच्चे की बुरी आदत न पड़े और बच्चे बुरी सोहबत से दूर रहें। आप जब भी किसी बच्चे की कोई बुरी बात देखती तो इस तरह नसीहत फरमाती कि इसकी इसलाह भी हो जाए और खामखा दूसरों के सामने शर्मिंदगी भी ना उठानी पड़े। हज़रत अम्मा जान के दिल में उस्ताद की बहुत इज्जत थी और आपकी यही कोशिश होती कि बच्चों के दिल में भी उस्ताद का एहतराम डाला जाए और बच्चे अपने उस्ताद की इज्जत करें। शेख याकूब अली साहब इरफानी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के उस्ताद थे। एक दिन उनकी बीवी हज़रत अम्मा जान के पास बैठी हुई थी। मियाँ साहब जो उस वक्त अभी बहुत छोटे थे, एक रबड़ का सांप लिए हुए आ गए और एकदम से उसे उनके सामने छोड़ दिया। इस तरह अचानक एक सांप देखकर वो खौफ से कांपने लगीं। हज़रत अम्मा जान ने उनकी हालत देखकर उन्हें तसल्ली दी कि बहू, ये तो रबड़ का सांप है, तुम ऐसे ही डर रही हो। और साथ ही अपने बेटे से फरमाया, मियाँ महमूद, ये तुम्हारी उस्ताद की बीवी हैं, ये तुमने क्या किया। वो शर्मिंदा हो गए और माफ़ी मांग कर बोले, अम्मा जान मुझसे भूल हो गई। बच्चों से प्यार। अगर तरबियत के मामले में आपकी कड़ी नज़र थी तो दूसरी तरफ बच्चों से प्यार भी बहुत था। उनकी छोटी छोटी बात का भी बहुत एहसास करती। अपने बच्चों के अलावा जमात के भी सारे बच्चों से आपको बहुत मोहब्बत थी। सबको अपनी औलाद की तरह समझती। उन्हें खिला पिला कर बहुत खुश होती। उनसे खुशी की बातें करती, लतीफ़े सुनाती, पहेलियाँ बुझवाती, कहानियाँ सुनवाती, खुद भी बड़े शौक से सुनती। एक दिन इरफानी साहब की बीवी, जिनका जिक्र पहले आ चुका है, अम्मा जान के पास आईं। उस वक्त हज़रत मुस्लिम मौद अपनी छोटी उम्र में हज़रत अम्मा जान के पास बैठे थे और हज़रत अम्मा जान की मुलाजमा सरदार से कहानियां सुन रहे थे। इरफानी साहब की बीवी को देखकर सरदार ने कहा, मियाँ अब इनसे सुनो। खैर, उन्होंने भी एक कहानी सुनाई जो मियाँ महमूद को बहुत पसंद आई। अगले रोज जब वो हज़रत अम्मा जान के पास गए तो मियाँ महमूद उन्हें देखकर आ गए और हज़रत अम्मा जान की गोद में बैठकर बोले, अम्मा जान, महमूद की अम्मा आ गईं, तुम इनको कहो कहानी सुनाएं। और बार बार जोर देने लगे। आखिर हज़रत अम्मा जान बोली, बहू, तुम्हें ख्याल नहीं आता मेरा बच्चा कहानी सुनने को कह रहा है। वो बोली, अम्मा जान, दिन को कहानी अच्छी लगेगी। आपने फरमाया, नहीं, बस हम दिन को ही सुनेंगे। वो बोली, अम्मा जान, दिन को कहानी अच्छी लगेगी। आपने फरमाया, नहीं, बस हम दिन को ही सुनेंगे। जब वो कहानी सुना रही थी तो हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए और पूछा, ये क्या कह रही हैं। हज़रत अम्मा जान ने बताया कि कहानी सुना रही हैं। आपने फरमाया, हाँ हाँ सुनाओ, बच्चों को कहानियाँ सुनाने से अकल बढ़ती है। हज़रत अम्मा जान बच्चों के हल्के फुल्के मजाक का बुरा ना मनाती थीं, ना ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थीं। एक दफ़ा हज़रत अम्मा जान के पास चार बच्चियाँ आईं। आप उठीं और उनके लिए चलगोज़े लेकर आईं। इनमें से जो सबसे छोटी बच्ची थी वो शरीफ थी। वो अपनी बड़ी बहन से बोली, देखो ताहरा, चलगोज़े मत खाना वरना अम्मा जान तुम्हें नदीदा समझेंगी। हज़रत अम्मा जान उसकी ये बात सुनकर खूब हंसी और बोली, मैं बिल्कुल तुम्हें नदीदा नहीं समझूंगी, खूब बेतकल्लुफ होकर खाओ। आपको अपने तमाम रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत थी, खास तौर पर अपने भाइयों और औलाद को बहुत चाहती थीं। अपनी बहुओं से बेटियों की तरह प्यार करती और इनका ख्याल रखती, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती। रिश्तेदारों की दावत करना, फिर सबको पसंद का खाना पकाकर खिलाना तो आपकी ख़ास आदत थी। हर ईद पर सब आपके मेहमान होते। आखिरी उम्र तक सबकी दावत करती रहीं, बल्कि बिल्कुल आखिर में जब तबीयत काफ़ी कमज़ोर हो गई तो हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब को बुलाकर फरमाया, मियाँ, मेरी तबीयत काफ़ी कमज़ोर है, मेरा दिल करता है कि कोई रकम मुझसे लेकर ख़ानदान की दावत का इंतज़ाम कर दे, अब खुद मेरे से होता नहीं। चुनाचे हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने खुद सारा इंतज़ाम करवा दिया। हज़रत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब बताते थे कि हज़रत अम्मा जान को अपने भाइयों की तकलीफ़ का बहुत एहसास होता था। जब मुझे हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम और दूसरे अहबाब ने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टरी पढ़ने का ही मशवरा दिया तो माली परेशानी की वजह से मैं मुश्किल में पड़ गया और मैं मायूस हो गया कि अब मेरा दाखिला नहीं हो सकता। जब हज़रत अम्मा जान को पता चला तो फ़ौरन बोली, तुम शौक से पढ़ने जाओ, मैं अपने जाती खर्च में से तुम्हें रकम दूंगी, किसी को पता ना चलेगा। ये बात आपने इसलिए की कि मीर साहब की गैरत को चोट ना लगे और इस तरह खुदा के फजल से मीर साहब अपने वक्त के बहुत बड़े और अच्छे सर्जन बन गए। बहुओं के साथ सलूक के मुतालिक आपकी बड़ी बहू हज़रत उम्मे नासिर साहबा ने बताया कि जब मेरी शादी हुई मैं 11 साल की थी। पहले दिन हज़रत अम्मा जान ने मुझे अपने साथ सुलाया कि बच्ची है, उदास हो जाएगी, और बाद में भी मुझे इतना प्यार दिया और मेरा ख्याल रखा। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी मोहब्बत बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि मैं अपना मेकअप भूल गई। जैसे एक माँ की गोद से निकलकर दूसरी माँ की प्यार भरी गोद में खुदा ने मुझे भेज दिया। औलाद से आपकी मोहब्बत का हाल हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा इस तरह बयान करती हैं कि आप बेहतरीन माँ थीं। आपका सीना ममता के जज्बात और प्यार से भरा हुआ था। आखिरी उम्र तक बच्चों की छोटी छोटी बात का ख्याल रखती रहीं। हजरत मुस्लिह मौऊद को बचपन में मीठे तारों के गोले, जिन्हें पंजाबी में माई बुड्ढी दा चाटा कहते हैं, बहुत पसंद थे। वो जब भी किसी बच्चे को खाते देखती, पैसे देकर फौरन मंगवा लेती और फरमाती, जाओ मियां महमूद को दे आओ, इन्हें बहुत पसंद है। इस तरह हर वक्त उनके खाने पीने का ख्याल रहता। इसी तरह कोई चीज अगर हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब की पसंद की पकी है तो कहती, ये मेरे बुशरा को पसंद है, कोई जाकर उसे दे आओ। अपनी आखिरी बीमारी के दिनों में जब अक्सर गुनूदगी की हालत रहती, उस वक्त भी बच्चों का ख्याल रहता। एक दिन हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब को मिर्जा शरीफ अहमद साहब समझी, जो उस वक्त बीमारी की वजह से लाहौर थे, मुझे ऐसा से कहने लगी, शरीफ को चाय पिलवा दो, कहीं सर में दर्द ना हो जाए। हजरत नवाब बारका बेगम साहबा बयान करती हैं कि अपने मियाँ की वफात के बाद मैंने अम्मा जान से इतनी मोहब्बत पाई कि मुझे अपना गम भूल गया। ऐसे मालूम होता था जैसे मैं दोबारा माँ की गोद में वापस आ गई हूँ। जब नई नई तकसीम मुल्क हुई और कादियान से लाहौर आए तो किसी की भी माली हालत अच्छी ना थी। एक बार मैं बाजार गई, एक कपड़ा बेहद पसंद आया लेकिन ले ना सकी। वापस आकर बातों बातों में अम्मा जान से जिक्र हुआ तो बोली, किस दुकान पर देखा था, क्या रंग था? कहने को आम सी बातें हो रही थीं, लेकिन अगले दिन क्या देखती हूँ कि वही कमीज का टुकड़ा अम्मा जान लेकर आ रही हैं कि लो पकड़ो और सिलवा कर पहनो। कल से मुझे नींद नहीं आई कि मेरी बच्ची दिल मार कर खाली हाथ वापस आ गई। गरज, हज़रत अम्मा जान को अपनी औलाद की छोटी सी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रहता और औलाद की तकलीफ अपनी तकलीफ समझती। यतीमों का ख्याल, यूं तो हर यतीम का ख्याल रखती, लेकिन ख़ास तौर पर जिन यतीम लड़कियों को आपने पाला, उनसे नहायत मोहब्बत और प्यार का सलूक किया, उनकी अपने बच्चों की तरह तरबियत की। आप उन्हें खुद नहलाती, सर में दही लगाती, तेल डालती ताकि सर में खुश्की ना हो जाए, और ये काम करते हुए आपके चेहरे पर खुशी होती। जब बच्ची समझने के काबिल हो जाती तो उसे सबसे पहले कलिमा फिर नमाज तर्जमे से सिखाती, इब्तदाई दीनी तालीम खुद देती, फिर किसी उस्तानी को मुकर्रर करके कुरान शरीफ ख़त्म करवाती, खाना पकाना सिलाई कढ़ाई सिखाती। आमिना नेक मोहम्मद साहिबा को भी आपने ही पाला और ये सब बातें सिखाईं, स्कूल भी भेजा ताकि दुनियावी तालीम भी हासिल कर लें, फिर उनसे छोटी छोटी कहानियों की किताबें सुनती ताकि उर्दू सही तरीके पर बोलना आ जाए, फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताबें सुनती और मतलब समझाती, तरबियत भी करती, साथ ही छोटी छोटी खुशी का ख्याल भी रखती, फिर इन लड़कियों की खुद ही शादी की। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत अम्मा जान किसी छोटे गांव की तरफ सैर को निकली, साथ में दो खादमाएँ इमाम भी और माई फज्जो भी थीं। जब आप गांव की एक गली में से गुजरी तो देखा कि गंदी चीथड़ों में लिपटी एक लड़की पड़ी है और खरबूजों के गंदे छिलके मुंह में डाल रही है। आपने उसके पास ठहर कर पूछा, ये कौन है? गाँव के चंद लोगों ने बताया कि यतीम है और गूंगी बहरी है। आपने एक खादमा को हुक्म दिया कि इसे इसी तरह ले चलो। वो कोई 6-7 साल की होगी। इसे लेकर कादियान आई और सीधी लड़कियों के उस स्कूल में पहुंची जो उस वक्त दारुल मसीह में ही लगता था। उस बच्ची का हुलिया इतना खौफनाक था कि वहां की सब लड़कियां उसे देखकर डर गईं और चीखें मारकर इधर उधर भागी। अम्मा जान उनकी हालत देखकर हंस पड़ी और फरमाया, ये एक यतीम लावारिस बच्ची है, इसे तुमने ही इंसान बनाना है, इसका नाम हिमी है। फिर खुद ही जाकर फेनाइल, कंघा, तेल, कपड़ों का जोड़ा, कीमती जूती वगैरह ले आई और उस्तानी महमूना साहबा से कहकर उसे नहलाया धुलवाया, साफ कपड़े पहनवाए, कंघी चोटी करवाई, फिर उसे खाना खिलाया। कुछ दिनों में ये बच्ची अम्मा जान की तवज्जो और खुदा के फजल से हैवान से इंसान बन गई। तीसरे चौथे दिन अम्मा जान उसे खुद नहलाती, जुएं निकालती, कंघी चोटी करती जैसे वो उनकी ही हो। बच्चों में रहते रहते उसे इतनी अकल आ गई कि वो घर का काम काज भी करने लग गई। जब जवान हुई तो अम्मा जान ने उसे अपने हाथों से ब्याह दिया। खादिमों से हुस्ने सलूक, अपने खादिमों से बहुत अच्छा सलूक करती और उनके आराम और खाने पीने का बहुत ख्याल रखती, दुख तकलीफ में उनके काम आती। एक दफा किसी औरत ने अर्ज की कि फलां मुलाजमा कहती है रोटी थोड़ी मिलती है। आपने बावर्ची खाने से उसका खाना मंगवाया और उसमें और सालन डाल दिया, दो और रोटियां मंगवा कर उसकी रोटी में शामिल कर दी और अपने तौलिए में लपेट कर रख ली और फरमाया, वो बच्चों वाली है, उसे रोटी कम न दिया करो। और जब वो मुलाजमा आई तो उसका दिल खुश करने के लिए फरमाया, देखो मैंने तुम्हारी रोटियां अपने तौलिए में लपेट कर रख दी हैं ताकि कम ना हो। ज़रूरतमंदों की मदद। मुकर्रम अब्दुर्रहीम साहब शर्मा अपना एक वाक्या सुनाते हैं। हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब ने अपनी कोठी का एक क्वार्टर हमें रहने के लिए दे दिया। उस वक्त घर के 5 अफराद थे और तनख्वाह बहुत कम, गुजारा मुश्किल से होता था। जब हजरत अम्मा जान को हमारी तंगी का पता चला और ये कि सारा घर सिर्फ आध सेर दूध पर गुजारा करता है तो आपको बेहद रहम आया और अपनी एक गाय हमें भेज दी। वो गाय अच्छी नस्ल की थी, 7-8 सेर दूध देती थी। इस गाय का घर में आना था कि ऐसी बरकत हुई कि कुछ दिन ही में हमारे हालात बदल गए। अपने काम खुद हाथ से करना। अस्तमा जान में बेहद मेहनत की आदत थी, छोटे से छोटा काम भी खुद अपने हाथ से करना पसंद करती थीं। हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब बताया करते कि मैंने उन्हें अपनी आंखों से कई बार खाना पकाते, चरखा काटते, नवाड़ बुनते, बल्कि भैंसों के आगे चारा डालते देखा है। बाज़ दफ़ा खुद भंगियों के सर पर खड़े होकर सफाई करवाती थीं और उनके पीछे लोटे से पानी डालती जाती थीं। कादियान से आकर भी बावजूद कमजोरी के अपने अक्सर काम खुद करती, बक्सों में से चीजें खुद निकालती और रखती, कोई हंडिया चढ़ा देता तो बैठकर खुद चमचा हिलाने लगती, सहारा लेना बिल्कुल पसंद न करती, कोई देना चाहता भी तो फरमाती मैं खुद चलूंगी, सहारा ना दो। ना सिर्फ ये कि अपना काम खुद करती बल्कि दूसरों के काम में भी हाथ बटाना आपकी आदत थी। मोहतरमा आमना बेगम चौधरी अब्दुल्ला खान साहब मरहूम कहती हैं कि एक दफा हजरत अम्मा जान हमारे घर आईं, मेरी वालिदा दूध बिलो रही थीं, छोटा भाई रो रहा था, अम्मा जान ने बड़े प्यार से कहा उठकर बच्चे को ले लो और खुद बैठकर दूध बिलोने लगी, खुद ही मक्खन निकाला। इसके बाद काफी अरसे तक हजरत अम्मा जान का ये मामूल रहा कि आप बहिश्ती मकबरे जाते हुए किसी न किसी औरत को हमारे घर छोड़ जाती जो दूध वगैरह बिलोती और वापसी पर साथ ले जाती। गिना और इसार। हजरत मुस्लिह माऊद फरमाते थे कि जब हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम फौत हुए तो उस वक्त हमारे पास गुजारे का कोई सामान ना था और हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का उस वक्त कुछ कर्ज भी था। हजरत अम्मा जान ने जमात से नहीं कहा कि वो ये कर्ज अदा करें, बल्कि आपके पास जो जेवर था उसे बेचकर हजूर का कर्ज अदा कर दिया। मैं उस वक्त बच्चा था और मेरे लिए उनकी खिदमत करने का कोई मौका ना था, मगर मेरे दिल पर हमेशा ही असर रहता था कि अल्लाह ताला ने हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को कितना मोहब्बत करने वाला और कुर्बानी करने वाला साथी दिया। शिर्क से नफरत। आपको शिर्क से सख्त नफरत थी, जिसकी दो तीन मिसालें हम आपको सुनाते हैं। एक दफा कोई औरत अपने किसी बीमार अजीज का हाल सुना रही थी, आखिर में बोली किसी इलाज से फायदा ना हुआ मगर फलां दवाई से अब आराम है। अस्तमा जान ने बड़े जोश से फरमाया तुम ये क्यों नहीं कहती कि इस तदबीर में खुदा की मर्जी शामिल थी और अब उसके फजल से आराम है। और एक बार क्या हुआ कि एक औरत ने एक प्याला हजरत अम्मा जान की खिदमत में पेश किया जिस पर कुछ लिखा हुआ था और कहा इसमें पानी डालकर पीजिए। आपने रोक दिया और फरमाया हम ऐसा नहीं करते, ये शिर्क है। एक खातून रोजाना रेडियो पर खबरें सुनकर अम्मा जान को सुनाया करती थी। एक दिन कोई खबर सुनाकर बोली सदके जाऊं रेडियो ईजाद करने वाले के, कैसी अच्छी चीज ईजाद की, घर बैठकर पूरी दुनिया की खबरें सुन लो, आवाज सुन लो। हजरत अम्मा जान ने बेसाख्ता फरमाया सदके जाऊं अपने रब के जिसने इंसान को इतनी अकल दी कि वो ऐसी चीजें ईजाद कर सके। आपकी मेहमान नवाजी। आपको मेहमान नवाजी की बहुत आदत थी, जो भी घर आता उसकी खातिर करती, मेहमानों का ख्याल रखती और हर एक की आदत के मुताबिक उसको चीज पेश करती। चौधरी फतेह मोहम्मद साहब सयाल जो पहले पहल कादियान आए तो चौथी जमात में पढ़ते थे, उस जमाने में हजरत अम्मा जान मेहमान नवाजी में खास तौर पर हिस्सा लेती। सब मेहमान हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के साथ गोल कमरे में खाना खाते थे। पहले दिन जब चौधरी साहब ने खाना खाया तो खाने के बाद हजरत अम्मा जान ने किसी शख्स को भेज कर पूछा कि किसी मेहमान को किसी खास चीज की जरूरत हो तो बता दे। चौधरी साहब ने बेतकल्लुफी से कह दिया कि मुझे लस्सी की आदत है। थोड़ी देर बाद दही की मीठी लस्सी आ गई, जो बाद दूसरे दोस्तों ने भी पी और बाज ने चाय और पान वगैरह भी मंगवाए। खुश मिजाजी। हजरत अम्मा जान बेहद खुश मिजाज थी, हल्की फुल्की तफरीह को पसंद फरमाती, पैदल सैर को जाना आपको बेहद पसंद था। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी आपके साथ पैदल सैर को जाया करती, बाद में भी ऐसा ही करती रही, पिकनिक भी किया करती। एक दफा आपने अपने बाग में आलू लगवाए और हजरत नवाब बारका बेगम साहबा और साहिबजादी अमतुल हफीज बेगम साहबा और दूसरी लड़कियों और बहुओं को लेकर बाग में सैर के लिए तशरीफ ले गईं। दो टोकरे आलू उबलवा कर अचार रखा और अपने बाग के लोकाट उतरवाए, चटनी तैयार की, जमीन पर दरियां बिछा कर सब ने ये दावत खाई। लड़कियों ने पींग झूली और खेलती रहीं, खूब तफरीक की। एक बार सैर करती हुई इरफानी साहब के घर तशरीफ ले गईं। उनका घर ढाब के किनारे पर था। हजरत अम्मा जान ने वहाँ बच्चे इकट्ठे करके कहा लड़को मुझे तैर के दिखाओ। ढाब के किनारे एक दरख्त के नीचे अपनी चारपाई बिछवाई और वहाँ बैठकर बच्चों की तैराकी देखती रहीं। उनके साथ हजरत उम्मे नासिर और दूसरी लड़कियां भी थीं। खाना भी सब ने वहीं ढाब पर खाया। आपकी तबीयत में मिजाह भी था। हजरत अम्मा जान के पास एक औरत जिन्हें सब असगरी की अम्मा कहते थे खाना पकाया करती थीं। उनकी आदत थी हंडिया में चमचा हिलाती जाती और साथ दुआ मांगती या अल्लाह सारी दुनिया के खानों का मजा मेरे हजरत साहब के खाने में आ जाए। हजरत अम्मा जान ने एक दिन हंसकर कहा यानी हजरत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब जो उस लाहौर में पढ़ते थे क्यों असगरी की अम्मा क्या मेरे भाई के खाने का भी। असगरी की अम्मा झट से बोली हाँ अल्लाह मियाँ बस मियाँ इस्माइल के खाने का मजा ना आए। इल्म की कदर और अदबी ज़ौक। आपको इल्म की बहुत कदर थी, इसलिए तालीम देने का ख्याल भी बेहद रखती। मोहतरमा उस्तानी सकीना साहिबा ने बताया, जब साहिबजादी अमतुल हफीज़ बेगम साहिबा 5-6 साल की हुईं तो हस्तम्मा जान ने मुझे उनको पढ़ाने पर मुकर्रर किया। मैंने उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया। इस अरसे में अम्मा जान ने मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ कीं और मेरी ज़िंदगी की हर ज़रूरत को पूरा किया कि मेरी सारी फिक्रें जाती रहीं। और जब मोहतरमा साहिबजादी साहिबा की शादी हुई तो आपने करीब ही ज़मीन भी दी कि इस पर मकान बनाओ। हस्तम्मा जान इल्म की कदर भी करती और खुदा ताला ने उन्हें इल्म अता भी किया था। जब भी कोई किसी किस्म का एतराज़ करता, आप दीन की तालीम से दलील देकर उसका जवाब देती। बेगम सेठ अब्दुल्ला भाई ने बताया कि एक मरतबा हम चंद बहनें हस्तम्मा जान के पास बैठी थीं। मैंने कपड़े की चंद गुड़ियाँ देखी जो बच्चों के खेलने के लिए रखी हुई थीं। मैंने अर्ज़ किया, गुड़ियाँ क्यों रखी हैं, दीन ने तो मना फरमाया है। आपने बगैर बुरा माने जवाब दिया, असल बात यह है कि दीन हक ने उस चीज़ को मना किया है जो हिंदू बुत बनाकर बड़ी इज्जत से घरों में रखते हैं, उनको खुदा की सिफात देकर इबादत करते हैं। इसलिए अल्लाह ने इस शिर्क को रोकने के लिए बुत बनाने से मना फरमाया। अरब के लोग भी जहालत के ज़माने में बुतों की इबादत करते थे, इसलिए अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को दूर करने के लिए बुतों के बनाने या रखने से मना फरमाया, लेकिन इस किस्म के खिलौनों को नहीं रोका। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा गुड़िया से खेला करती थी। इस किस्म की किसी भी चीज़ को अल्लाह की सिफत देकर इबादत की गरज से घर में रखना बेहद गुनाह और शिर्क है। वही खातून कहती हैं कि फिर मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और दूसरे अहबाब की तस्वीरें देखकर एतराज़ किया। इस पर हज़रत अम्मा जान ने जवाब दिया, हज़रत साहब की तस्वीर इबादत या परस्तिश के लिए नहीं, बल्कि ये तो इसलिए है कि जो लोग दूर के मुल्कों में रहते हैं वो इस तरह अपने इमाम का चेहरा देख लें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक है, और अंग्रेज़ और दूसरे मगरबी मुल्कों के लोग तस्वीर को देखकर इंसान के अखलाक वगैरह का अंदाज़ा कर लेते हैं। ये तस्वीर तो खुद दावत इल्लाह का ज़रिया है। अगर सिर्फ तस्वीर रखना मना होता तो तुम जो जेब में रुपया रखती हो, बच्चों की किताबों में तस्वीरें होती हैं, फिर तो ये सब मना होता। मैंने कहा, इस बात से तस्वीर का मसला भी समझ आ गया। तीसरा वाकया उन्होंने ये सुनाया, एक मर्तबा मैंने देखा कि बाज़ बीबियों ने अपने बालों में परांदे डालकर चोटियों का बढ़ाया हुआ था। मैंने इसके मुतालिक सवाल किया तो आपने फरमाया, ये तो रेशम के परांदे हैं, असली बालों के नहीं, इनका डालना जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जालिम लोग औरतों पर बड़े बड़े जुल्म करते थे, उनके बाल ज़बरदस्ती काट कर बेचते थे, इसलिए आपने मना फरमाया कि औरतों के बालों में बाल ना डाले जाएं। अदबी ज़ौक। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को किसी उर्दू लफ्ज़ के ख़ास इस्तेमाल के बारे में पूछना होता तो सबसे पहले हज़रत अम्मा जान से पूछते, अगर कोई शुबा रह जाता तो फिर नाना जान या नानी जान से पूछते। अम्मा जान कभी कभी शेर भी कह लिया करती। एक बार हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा जब मालीर कोटला में थीं तो उनको ईद के मौके पर ये शेर लिख भेजे, तुम तो अपने घर में बैठी हुरमो दिलशाद हो, हर तरह के फिक्र गम से दूर हो, आज़ाद हो, देखकर बच्चों को अपने गिर्द हंसते खेलते, फजल मौला से मनाती ईद क्या याद हो, हाल क्या उसका बताऊं जिसकी बच्ची है जुदा, तुम भुला बैठी हो उसको पर उसे तुम याद हो। एक दफ़ा हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब के तालिब इल्मों में से एक ने, जिनका नाम मौलवी निज़ामुद्दीन था, एक कागज़ पर रोटी की शिकायत लेकर भेजी जो अंदर से पक कर आई थी। अगर रोटी यही बुढ़िया पकावे, करो रुखसत के फिर सब घर को जावे, वा इल्ला अर्ज़ करना है ज़रूरी कि हो रोटी मुसफ़ा और तनूरी। ये दोनों शेर तो टूटे फूटे थे, बस जो वो लिख सके लिख कर भेज दिया, लेकिन हज़रत अम्मा जान ने उसी वक्त उसी कागज़ के पीछे ये शेर लिख कर भेज दिए, हमें तो है यही बुढ़िया गनीमत जो रोटी को पका देती है बरवक़्त, जिसे बुढ़िया के हाथों की ना भावे तो लावे उसको जो अच्छी पकावे। सवाब हासिल करने का शौक़, छोटी सी छोटी बात भी जिसके करने से सवाब मिलता हो आप ज़रूर करती। एक दफ़ा हज़रत अम्मा जान बैतुद्दुआ में नमाज़ पढ़ रही थी, पास ही एक खातून बैठी उन्हें पंखा झल रही थी। जब हज़रत अम्मा जान नमाज पढ़ चुकी तो उन्होंने भी वही नमाज शुरू कर दी। हज़रत अम्मा जान ने पंखा हाथ में लेकर उनको झलना शुरू कर दिया। उन बेचारी ने घबरा कर जल्दी से नमाज ख़त्म कर दी, ये सोचकर कि कहीं बेअदबी ना हो, तौबा तौबा करने लगी। हज़रत अम्मा जान ने यह सुनकर फरमाया, क्या मैं सवाब हासिल ना करूँ। हुस्ने इंतज़ाम और लेन देन। हज़रत अम्मा जान की ज़मीनें शेख नूर अहमद साहब संभाला करते थे, लेकिन आप खुद उनकी निगरानी करती थी। उनको बुलाकर पूछती रहती, मसलन फलां खेत में मकई क्यों बोई गई, उसे गंदम उगाने के लिए छोड़ना चाहिए था वगैरह वगैरह। जो मवेशी पाले होते थे उनका ख्याल रहता। एक बार एक भैंस को 2-3 दिन गतावा ना मिला तो आपने खुद जाकर उसे गतावा डाल दिया। आप हिसाब में बहुत साफ थी, यानी जब भी कोई चीज़ वगैरह मंगवाती उसी वक्त उसकी रकम अदा कर देती। एक बार हजरत अम्मा जान ने बाबू अब्दुल हमीद साहब से कोई चीज़ लाहौर से मंगवाई, उन्होंने वो चीज़ ला दी लेकिन अम्मा जान को उसकी कीमत ना बताई। इत्तेफाक से हजरत अम्मा जान को भी कीमत पूछनी याद ना रही, वरना आम तरीका ये था कि जब भी कोई चीज़ ले जाकर दी उसी वक्त रुपए दे दिए। बाद में आपको याद आया तो आपने उसी वक्त बाबू साहब को बुला भेजा और फरमाया इस चीज़ की क्या कीमत है, बता दी होती तो मैं आपको बुलवाने के बजाय पैसे ही भेज देती। बाबू साहब ने कहा ये तो मेरी तरफ से तोहफा है, मैंने जानकर कीमत नहीं बताई। अम्मा जान ने फरमाया नहीं, जो मैं चीज़ कहकर मंगवाऊँ उसकी कीमत ज़रूर लेनी पड़ेगी, और आपने ज़ोर देकर कीमत अदा कर दी। जानवरों पर शफकत। हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब को बचपन से ही शिकार का बहुत शौक़ था। हकीम अब्दुल अज़ीज़ ख़ान भी यही शौक़ रखते और अक्सर उनको अपने साथ शिकार पर ले जाया करते। एक दफ़ा का वाक़या है, मई का महीना था, हकीम साहब ने हज़रत मियाँ शरीफ अहमद साहब से कहा मियाँ बंदूक लाओ शिकार पर चलें। मियाँ साहब खुश खुश बंदूक लेने चले गए, वापस आकर बोले अम्मा जान बंदूक नहीं देती। इस पर खान साहब ने खुद कहला भेजा कि कुछ देर के लिए बंदूक दे दें। आपने जवाब में फरमाया आजकल परिंदे अंडों पर होते हैं, मैं भी बच्चों वाली हूँ, मैं आजकल बंदूक हरगिज़ नहीं दूंगी। दरगुजर करना, माफ़ कर देना आपकी फितरत का हिस्सा था, छोटी बात हो या बड़ी और किसी बात से कैसी ही तकलीफ़ या नुकसान पहुँचा हो आप दरगुजर कर देती। अरशद कुरैशी साहब एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। मैं जब छोटा सा था हजरत अम्मा जान के घर आया जाया करता था। एक बार गया तो देखा आप गोद में अपने पोते हजरत मियाँ नासिर अहमद साहब को लिए बैठी हैं। मुझे देखकर फरमाया लड़के को जरा बाहर ले जाओ। बाहर से उनका मतलब शायद घर का सहन था। मैं समझा घर से बाहर ले जाने को कह रही हैं कि सैर करा लाऊं। मैं नन्हे मासूम को गोद में उठाकर खुश खुश बाग में जा पहुँचा। ठंडी हवा में खिलाकर जब वापस हुआ तो देखा पीर इफ्तिखार अहमद साहब हामते हामते भागे चले आ रहे हैं। मुझे देखकर उन्हें तसल्ली हुई और बोले तुम बच्चे को कहाँ लिए फिरते हो, जल्दी लाओ, सब जगह तलाश हो रही है। ये सुनकर मैं जल्दी जल्दी उनके साथ हो लिया, क्योंकि घर में बच्चे को ना देखकर मेरी तलाशी शुरू हो गई थी कि ये किधर गायब हो गया। कई औरतें मर्द मेरी तलाश में इधर उधर दौड़ा दिए गए थे। मैं डरते डरते घर में दाखिल हुआ, दिल खौफ से कांप रहा था कि जाने अब मेरे साथ क्या हो। लेकिन हजरत अम्मा जान पर नजर पड़ते ही खौफ दूर हो गया और दिल में इत्मीनान और खुशी पैदा हुई। बजाय इजहारे नाराजगी करने या डांट टपट करने के वो खिलखिला कर हंस पड़ी और बोली इसे इतनी दूर कहाँ ले गए थे, मैंने तो बाहर सहन में ले जाने को कहा था। घर में किसी मुलाजमा से कोई नुकसान हो जाता या कोई चीज टूट जाती तो इन्ना लिल्लाह पढ़कर खामोश हो जाती, डांटने के बजाय दरगुजर से काम लेने को ही बेहतर जानती। आपको चुगली, गीबत या किसी की गैर हाजिरी में शिकायत करना बहुत ही बुरा लगता था, इस बात को बहुत नापसंद करती थी। एक औरत थी जिसमें ये कमजोरी थी, उसको आपने समझाया कि ये बातें अच्छी नहीं लगती, अल्लाह मियाँ मना करता है। उस औरत ने सुनकर फौरन कहा कि आपको फलां औरत ने बताया होगा कि मैं ऐसा करती हूँ। अम्मा जान इस बात पर बहुत खफा हुई और कहा तुम बेवजह बदजनी से काम ले रही हो। कबूलियत दुआ। बच्चों, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हजरत अम्मा जान को दुआओं पर बहुत यकीन था। आप हर वक्त हर बात के लिए दुआ करती और अल्लाह ताला आपकी सुनता भी बहुत था। इस बारे में हम आपको एक वाक्या सुनाते हैं। माड़ी बुजियां गांव में एक अहमदी मियां अल्लाह रखा दुकानदार थे। वो गांव से गल्ला खरीद कर आस पास यानी इर्द गिर्द की मंडियों में फरोख्त करते थे। एक दिन वो कादियान गए तो उनका घोड़ा खुद ब खुद खुल कर भाग गया, या अल्लाह जाने कोई चोर खोल कर ले गया। वो बेचारे बहुत परेशान हुए। कादियान और उसके करीब जितने गांव थे सब जगह तलाश किया मगर घोड़ा ना मिला। मायूस होकर हजरत अम्मा जान के पास आए और दुआ की दरख्वास्त की। आपने एक दुआ कागज पर लिख कर दी और फरमाया मैं भी दुआ करूंगी, आप भी ये दुआ पढ़ते जाएं और दोबारा घोड़े को तलाश करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। मियाँ अल्लाह रखा दुआ पढ़ते हुए साथ ही कागज की स्याही खुश करने के लिए फूंके मारते हुए लंगर खाने से थोड़ी दूर गए थे कि देखा घोड़ा दौड़ता हुआ सामने आ रहा है, और इस तरह हजरत अम्मा जान की दुआ से घोड़ा मिल गया। प्यारे बच्चों, ये सारे वाक़यात पढ़कर और जो कुछ भी हमें हजरत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब, हजरत नवाब मुबारका बेगम साहिबा और हजरत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने हजरत अम्मा जान के मुतालिक बताया, इन तमाम बातों को देखकर हम हजरत अम्मा जान की सीरत के बारे में बिला तामुल ये कह सकते हैं कि आप बहुत सदका व खैरात करने वाली, हर चंदे में शरीक होने वाली थीं। पाँचों वक्त की नमाज पहले वक्त में अदा करती, बल्कि तहज्जुद और दूसरे नवाफिल भी पढ़ती। दिल में हर वक्त खुदा का खौफ रहता। آپ جہاں ایک خدمت گزار وفادار بیوی تھیں وہاں اولاد کے لیے ایسی ماں تھیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ گھر داری اور دوسرے انتظام بھی بڑے اعلیٰ طریق پر کرتیں، بہت محنتی تھیں، صبر اور شکر سے کام لیتیں، بہت کھلے دل کی مالک تھیں، بہت بڑا دل تھا ان کا۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، کوئی تکلیف پہنچائے، کبھی بھی شکایت نہ کرتیں، بلکہ ظاہر بھی نہ ہونے دیتیں۔ تکلیف دینے والا خود ہی خاموش اور شرمندہ ہو جاتا۔ شکوہ، چگلی، غیبت نہ آپ کرتیں نہ سننا پسند کرتیں۔ دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ نہ تھا، محبت ہی محبت تھی، خدا کی محبت، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت، اس کی کتاب سے محبت اور اس کے بندوں کی محبت سے آپ کا دل بھرا رہتا۔ ہر ایک کے کام آنا، دکھ درد بانٹنا، ہر ایک خوشی میں دل سے شامل ہونا آپ کی فطرت تھی۔ خوش مزاج بھی تھیں اور شاعرہ بھی، ادب اور علم سے لگاؤ بھی تھا اور قدر بھی۔ بہت صفائی پسند تھیں، صاف ستھرا لباس پہنتی، خوشبو آپ کو بہت پسند تھی۔ حضور بھی آپ کے لیے عطر اور چمبیلی کا تیل خاص طور پر منگوایا کرتے۔ لباس کے ساتھ اپنا گھر بھی صاف ستھرا رکھتی۔ آپ کا کمرہ ہر وقت اگربتی اور ہرمل اور لوبان کی دھونی کی خوشبو سے مہکا رہتا۔ آپ کے ننہال کی طرف سے رشتے کے ایک بھائی تھے جو غیر احمدی تھے۔ وہ ایک دفعہ سردیوں میں قادیان آئے۔ یوں تو قادیان اور قادیان والوں سے بہت متاثر ہوئے، لیکن اپنی آپا نصرت جہاں بیگم نے آپ پر خاص اثر چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں آپا صاحبہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صبح صبح میرے پاس پہنچ جاتی اور دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آ جاتی، السلام علیکم کہہ کر باتیں شروع کر دیتی۔ میں لحاف لپیٹے پلنگ پر بیٹھا ہوتا اور وہ ٹہل ٹہل کر باتیں کرتی جاتی۔ آواز میں کرارا پن باقی تھا، نظر کام کرتی ہے، ہاتھ پاؤں مضبوط، صحت اچھی ہے اور بڑی چست ہیں۔ بات کو غور سے سنتی ہیں اور ہر بات کا معقول جواب دیتی ہیں۔ زندگی کے ہر موضوع پر باتیں کرتی ہیں اور بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ پان کا زیادہ شوق ہے، باتیں کرتی جاتی ہیں اور پان کھاتی جاتی ہیں۔ دلی والوں کا سا لباس ہے، کرتا اور تنگ پائجامہ، کرتے پر سویٹر پہن کر کشمیری شال اس طرح اوڑھتی ہیں کہ سر بھی ڈھک جاتا اور مفرل بھی معلوم ہوتا، اور کوٹ پہن کر ان سب کو ایک جگہ کر لیتی ہیں۔ ایک ہاتھ میں تسبیح اور ایک میں دستانہ ہوتا ہے۔ صبح ہی نماز کے بعد گھر سے نکلتی ہیں، پہلے عزیزوں کے اور پھر دوستوں کے اور جماعت کے دوسرے مخلص احباب کے گھر جاتی ہیں۔ اس میں حال پوچھنا اور بیماروں کی تیمارداری کرنا وغیرہ سب شامل ہوتا ہے۔ کہیں بچوں کا علاج کرتی ہیں، کہیں بڑوں کی طبیعت پوچھتی ہیں، کسی جگہ دوا بتاتی ہیں، کہیں خود تیار کر کے دیتی ہیں، اور اس علاج معالجے میں ان کی اچھی مہارت ہے۔ 10-11 بجے تک فارغ ہو کر گھر پہنچ جاتی ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرتی ہیں، عصر کی نماز تک گھر میں بہو بیٹوں سے ملتی ہیں، شام کو پھر سیر کے لیے نکل جاتی ہیں۔ اس پروگرام پر تقریباً روزانہ عمل کرتی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 54 سال ہے، مگر ارادے میں جوان ہیں، اپنے عزم میں جوان ہیں، عمل میں جوان ہیں۔ ایک باروب کمانڈر کی طرح قادیان کی آبادی پر اثر ہے۔ جس طرح خلوص اور محبت سے ملتی ہیں، اسی طرح روب اور اثر سے کام لیتی ہیں۔ ان کاموں میں ان کو دلچسپی ہے اور ان کو ہی اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے، جس طرح خاندان کو ان کی ضرورت ہے۔ قوم اور مذہب کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک سے حسن سلوک کے ساتھ ملتی ہیں، جو کچھ ممکن ہوتا ہے اس کی خدمت کرتی ہیں، اطمینان اور دلاسہ دیتی ہیں۔ غرض، آپ بہت بلند اخلاق کی مالک تھیں۔ پیارے نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سنت اور حدیث پر پورے طریقے پر چلنے والی تھیں۔ آپ کا یہ اعلیٰ نمونہ جماعت نے دیکھا اور آپ سے محبت کی اور محبت پائی۔ آپ جماعت کے لیے حقیقی ماں سے بھی بڑھ کر تھیں۔ آپ کی وفات، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ساری جماعت اس طرح تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر خدا کے حضور دعائیں مانگ رہی تھی کہ جیسے کوئی اپنی سگی ماں کے لیے مانگ رہا ہو۔ لیکن خدا کی تقدیر آن پہنچی تھی، اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ 25 دن کی بیماری کاٹ کر 20 اپریل 1952 کو آپ اپنے مولا حقیقی سے جا ملیں۔ آپ قادیان سے ہی ایک لٹھے کا تھان اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کرتا ساتھ لائی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ یہ میں نے اپنے کفن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ کو پہلے وہ متبرک کرتا اور پھر وہی کفن پہنایا گیا اور بہشتی مقبرے ربوہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس سال احمدیت کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا، اور وہ ہے حضرت اما جان کی وفات۔ ان کا وجود ہمارے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان کی ایک زنجیر کی طرح تھا۔ وہ ہمارے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان ایک زندہ واسطہ تھیں۔ یہ واسطہ ان کی وفات سے ختم ہو گیا، اور حضرت نوام بارکہ بیگم صاحبہ نے آپ کی وفات کے بعد ایک مضمون میں لکھا، صرف اس لیے نہیں کہ اماں جان بہت زیادہ محبت کرنے والی ماں تھیں، اور اس لیے نہیں کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی نہیں کہ مجھے ان سے بہت محبت تھی، بلکہ یہ حق اور صرف حق ہے کہ حضرت اماں جان کو اللہ تعالیٰ نے سچ مچ اس قابل بنایا تھا کہ وہ ان کو اپنے مامور کے لیے چن لے، اپنی خاص نعمت کا خطاب دے کر اپنے مامور کو عطا کر دے۔ آخر میں لکھتی ہیں، میری ماں تو ایک بے بدل ماں تھی، سب احمدیوں کی ماں، وہ تو اب خاموش ہیں، مگر ہم جب تک خدا ان سے ملائے گا نہیں، ان کی جدائی کی کھٹک برابر محسوس کرتے رہیں گے۔ عمر بھر کا پیش جام بند کر یہ تڑپائے گی، وہ نہ آئیں گی مگر یاد چلی آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔